आलिंद के सम्मुख तोरण से लटके पिंजरे में सारिका की ओर दृष्टि किए वयोवृद्ध चिंतित स्वर में बोले, ठीक कहती हो वत्से, यही तो जटिलता है। प्रेस्त दासत्व मुक्त हो चुका है, पृथ्वीसेन गण द्वारा सम्मानित हो चुका है, अन्यथा वह न्याय का प्रश्न लेकर ना आता। प्रेस्त द्वारा अपनी माताओं के अस्तनों से छीनकर बेच दिए जाने वाले अश्व स्वावक या दास तो न्याय की समस्या नहीं उठाते। वत्से, एक व्यक्ति द्वारा न्याय की पुकार का प्रश्न जटिल नहीं होता। युवक पृथ्वीसेन खड्गबल से अपने अधिकार की रक्षा का प्रयत्न कर सकता है, प्रश्न केवल उसके सम्मान और अधिकार का नहीं, समस्या गूढ़ है। उसने परिषद के सम्मुख सेना में पद के लिए आवेदन किया है, वह उसके योग्य है, उसका पिता महत्वाकांक्षी है। प्रेस्त 10,000 स्वर्ण मुद्रा व्यय कर सकता है, यदि धर्मस्थान पृथ्वीसेन को वर्ग कुल और अभिजात वंश के सम्मान का अधिकार देता है तो वह सेना में पद का अधिकारी हो जाता है। यदि परिषद उसे सेना में पद का अधिकार देती है तो वह अभिजात वंश और कुल के सम्मान का अधिकारी हो जाता है। पृथ्वीसेन का सेना में पद पाना सामंत के आसन का पहली सीढ़ी पर पाव जमाना है। यदि प्रत्येक कुल सामंत का कुल का पद और अधिकार पा सके तो अभिजात कुल का अधिकार क्या रहेगा। यदि गण केवल द्विज कुलों का होता है, स्थिति दूसरी होती, परंतु गण मिश्रित है, उसमें यवन सामंत हैं, तथागत के अभिधर्म से प्रभावित अनेक क्षत्रिय और वैश्य हैं, उनके लिए वर्ण की शुद्धता और अधिकार का महत्व नहीं, प्रत्युत उन्हें वर्ण वर्ग की शक्ति से स्पर्धा है। इसलिए परिषद में गण संवाहक इस विषय को स्थगित किए हैं। धर्मस्थान में इस प्रश्न का निर्णय समाज की व्यवस्था का प्रश्न है। तात के उत्तर से अनुत्साहित होकर दिव्या ने पूछा, परंतु तात, मद्र गणराज के धर्मस्थान में सिंह और मृग के एक साथ जल पीने का भी जो सिद्धांत है। तात के अत्यंत शुभ्र समश में आच्छादित मुख पर मुस्कान झलक आई। सिंह और मृग के एक साथ जल पीने का रूपक न्याय व्यवस्था के प्रति आदर के लिए आवश्यक है, परंतु सिंह और मृग का एक साथ जल पीना दोनों की परवस्ता से ही संभव है। स्वतंत्र केवल उन्हें एक साथ जल पीने के लिए विवश करने वाला शासक है और उनकी यह इच्छा ही न्याय का आधार है। नास्तिक मारिश ने तथागत की जातक कथा उत्कीर्ण न करने की प्रतिज्ञा भंग के अभियोग में धर्मस्थान से अर्थदंड पाया। व्यवस्था की रक्षा के लिए वह आवश्यक था, परंतु यदि मारिश दंड भय और अर्थलोभ से अपने मत के विरुद्ध आचरण करता तो क्या उचित होता। पुत्री, न्याय के अनेक दृष्टिकोण हो सकते हैं। तात स्नेह से पपोत्री के केशों पर हाथ रखे रहे, परंतु मन के क्षोभ के कारण दिव्या के लिए वह स्नेह व्यवहार उस समय अर्थहीन बल्कि मानसिक यंत्रणा बन रहा था। दिव्या के जन्म से पूर्व भी उसकी माता का स्वास्थ्य क्षीण था। उसके जन्म के दिन ही दासी धाता और अपने पीन अस्तनों पर नवजात बालिका को लिए उपस्थित हुई। धर्मस्थ के प्रसाद में लोग धाता का अपना नाम भूलकर वत्सल्य कन्या की धाता को सभी धाता ही पुकारने लगे। दासी ने भी उसी नाम को स्वामी की कन्या के माता के स्थान मानकर गर्व से धारण किया। दिव्या की माता ने अपनी संतान को धात्री की कन्या को अपनी संतान की छाया मानकर छाया ही पुकारा और उसका नाम भी छाया ही हो गया। वायुवृद्ध धर्मस्थ के स्वर्गीय ज्येष्ठ पुत्र के एकमात्र पुत्र की एकमात्र कन्या सभी की दुलारी थी। शैशव में ही उसकी माता और पिता का भी देहांत हो जाने से परिवार का अनुराग उसके प्रति और भी उमड़ पड़ा। वह धर्मस्थ के अग्रज पुत्र, अग्रज पौत्र और अग्रज पपोत्री सभी की प्रतिनिधि बनकर विशेष आदर और स्नेह की पात्र थी। दिव्या अपनी मातामही और धात्री सहित प्रसाद के उसी भाग में रहती जिसमें स्वयं धर्मस्य रहते थे, परंतु दूसरे पितृव्यों के प्रसाद कक्ष भी उसके लिए पराए न थे। वह तितली की भांति सभी कुंजों पर उड़ती फिरती और उसकी धात्री छाया उसके साथ साथ रहती। 10 वर्ष की आयु तक छाया केवल दिव्या के लिए क्रीड़ा सखी रही। इसके पश्चात प्रसाद की छोटी मोटी सरल सेवा के लिए उसे कभी इस कक्ष में और कभी दूसरे कक्ष में नियत कर दिया जाता। जैसे आकाश में चंद्र की कलाओं की पूर्ति होने से पृथ्वी पर पड़े थिथले जल में पड़ने वाले चंद्र के बिंब में भी कलाओं की पूर्ति होती है, वैसे ही दिव्या की छाया ने भी वयस्क होकर यौवन पाया। आकाशगामी चंद्रमा तो स्थिर गंभीर पति से अपनी यात्रा पूर्ण किए जाता है, परंतु थिथले जल में पड़ता उसका प्रतिबिंब साधारण कारणों से भी छुप भी हो उठता है। छाया अंतःपुर में युवा पुरुषों और उनकी युवती पत्नियों की सेवा और अत्यंत सामीप्य से अपने शरीर के विकास और उपयोग से शीघ्र ही परिचित हो गई। एक दिन विनय शर्मा की माता ने छाया को असमय अपने पुत्र के कक्ष में पाकर क्रुद्ध हो उसे सरल सेवा से वंचित करके बावड़ी में स्नान का जल लाने का कठिन कार्य सौंप दिया। भाग्य ने रक्षा की, उसके शरीर पर यौवन उन्मुक्त होकर निखर आया था, मुख पर यौवन का लावण्य था। छाया ने दास नायक बाहुल की दया से स्थानागार में अतिथियों के सम्मुख मध्य आधार उपस्थित करने की सेवा का कार्य पा लिया। वामनों, कंचुकियों, जर्जर वृद्धों और ईर्ष्यालु दासियों से भरे अंतःपुर के जीवन से स्थानागार की सेवा कहीं अधिक रुचिकर थी। वहाँ वैचित्र था, स्वच्छंदता थी, दासों का नायक बाहुल छाया के प्रति सहृदय था। छाया का मन स्थानागार तक जा पाने के लिए अधीर हो उठता, परंतु ड्योढ़ी पर खड़ी खड़गधारी योनि की मूर्ति स्मरण करने से शरीर का रक्त जम जाता था। उसका मन चाहता कि दास बाहुल की विरह की पीड़ा से व्यथित अपने शरीर को अंतःपुर की विशाल प्रशांत भित्तियों से टकराकर छिन्न भिन्न कर दे, शूलों से भारी झाड़ी में अपने शरीर को डाल दे। कई मास तक वह मलिन रही और फिर भाग्य और देवता की इच्छा मानकर सह गई। दिव्या ने सुना पृथ्वीसेन तात के सम्मुख आवेदन के लिए प्रस्तुत हुआ है। वह सील के विचार से उस समय जाकर अपने समीप न बैठ सकी, परंतु मन उत्सुकता और दुविधा से व्याकुल होता रहा। पृथ्वीसेन से तात विमुख न थे, परंतु उसका अपना मन पृथ्वीसेन से कुछ कहना चाहता था, क्या सो वह स्वयं भी ठीक से न जानती थी। ऐसी ही कुछ सहानुभूति और संतावना के रूप में पृथ्वीसेन कुछ भटका सा आश्रय की खोज में खिन्न सा जान पड़ता था। दिव्या स्वयं भी कभी उसी प्रकार अनुभव करती थी, तब भरे पूरे प्रसाद में भी सुनापन लगता। उस समय महापृथ्वियों पृथ्वियों मातामही और पितृवायों भाइयों और बहनों का स्नेह बोझ सा जान पड़ता था। तात धर्मस्थ के प्रसाद में अन्य परिचित परिवारों में देवी मल्लिका और वसुमित्रा के यहाँ समाज में आपनको और साम्हय में सब कहीं दिव्या के सतर्क कान पृथ्वीसेन का नाम मधुपुर उत्सव की घटना और परिषद के सम्मुख पृथ्वीसेन के आवेदन को लेकर मतामत का प्रसंग सुन पाते। उसके मन में एक कांटा सा बैठ गया। परिषद और धर्मास्थान दोनों ही स्थानों पर पृथ्वीसेन के संबंध में विचार स्थगित था। दिव्या मन में दुविधा आने के कारण संकुचित और स्थिर रहती, वह कहीं भी संतोष न पाती। मातामही इस जीवन की यात्रा पूर्ण कर अपने विश्वास में परलोक के समीप पहुंच रही थी और अत्यंत परलोकाभिमुख हो रही थी। वे निश्चय न कर पाई थी ब्रह्मलोक अधिक श्रेयस्कर होगा या निर्वाण। इसीलिए अंत समय जान वे अत्यंत व्याग्रता से दोनों की ही प्राप्ति के लिए याज्ञिक पुरोहितों आहर्तों और भिक्षुओं की कृपा के लिए प्रतिशील थी। विशाल और विस्तृत परिवार की चिंता उनके लिए केवल क्षोभ का कारण बन गई थी। दासी धाता ने महादेवी का ध्यान दिव्या के शैथिल्य और अनमस्यकता की ओर दिलाया। महादेवी ने कुमारी के विवाह योग्य आयु के प्रति और इस ओर तात धर्मस्य तथा दूसरे प्रतिव्यों की उपेक्षा के प्रति असंतोष प्रकट कर दिव्या को व्यस्त रखने के लिए अनेक कार्य निर्दिष्ट कर दिए। उन्होंने आज्ञा दी प्रपोत्री दिव्या पाकशाला में विशेष पकवानों का आयोजन करे, अतिथियों के लिए विशेष पुष्पमालाएं गूथे, तुलिका लेखन करे, छाया को पुनः उसकी सहचरी के रूप में नियत करने का आदेश दिया। दिव्या और छाया अंतःपुर के उद्यान में एक कुंज में बैठी मालाएं गूथ रही थी। सम्मुख अनेक प्रकार के पुष्पों का ढेर लगा था। छाया की अंगुलियां द्रुत गति से चल रही थी और उसकी दृष्टि कभी अपने अंगुलियों की ओर कभी दिव्या के झुके हुए मुख की ओर चली जाती। पीठिका पर बैठी दिव्या की अंगुलियां स्थिर थी और दृष्टि निरंतर झुकी हुई। हाथ की अद्भुती माला छाया पर फेंक कर दिव्या ने मन का अवरुद्ध क्षोभ प्रकट किया। यह झमेला मेरे सामर्थ्य का नहीं, और उत्तरी से मुख ढक लिया। छाया कुछ क्षण दृष्टि दिव्या के मुख की ओर लगाए मौन रही, फिर बोली, भद्रे महादेवी अम्मा से कह रही थी, तात और पितृव्य कुमारी की आयु का विचार क्यों नहीं करते? वह यौवन के उद्योग के कारण ही अनमशक हैं, जैसे ऋतु में पशु पक्षी। आवेश में मुख से उत्तरी हटाकर दिव्या ने क्षुभ्य स्वर में भत्सना की, निर्लज्ज तू मर जा, तुझे तनिक सील नहीं। इस प्रकार की धृष्टता के कारण आर्य अमिता ने तुझे अपने कक्ष से निकाला होगा। नहीं भद्रे, छाया ने निसंकोच दिव्या के नेत्र में देखकर और उंगलियों से माला गूंथते हुए उत्तर दिया, भद्रे नहीं जानती स्वामिनी अमिता ने किस अपराध से मुझे कक्ष से बहिष्कृत किया। दिव्या के उत्तर की प्रतीक्षा न कर उसने कहा, उस संध्या आर्य विनय अपने कक्ष में ही थे, उन्हें कादम्बनी का पात्र उपस्थित करने की आज्ञा दी। पात्र प्रस्तुत करने पर आर्य ने कौतुक से हाथ मेरे अंग पर दबा दिए। मेरे लजाकर सकुचाने से आर्या कुपित हो गई। बोली, तू छली और उल्टा है, दासी होकर कुल ललनाओं की भांति लाज का नाट्य करती है, तू आर्य को मोहित करना चाहती है। अलम प्रसंग से खिन्न होकर दिव्या ने मुख फिरा लिया, परंतु छाया समवयस्क होने और सहसों में स्वामिनी की कीड़ा सखी रहने के अधिकार से कहती गई, महादेवी ने अम्मा को आदेश दिया है, संध्या समय आचार्य प्रवर्धन के पुत्र आर्य रुद्रधीर के आने पर कुमारी उनकी अभ्यर्थना करें। स्वामिनी अमिता महादेवी से कह रही थी, आर्य रुद्रधीर कुमारी के प्रति अनुरक्त हैं। भिगुटी में बल डालकर दिव्या ने धमकाया, वाचाल चुप रह, और पीठिका से उठकर अपने कक्ष की ओर चली गई। छाया में अपने संबंध में अलज्जाजनक प्रसंग सुनकर कुंठा अनुभव कर वह पर्यक पर जा लेटी। लज्जा में अपने सिमट जाने के लिए उसने दुकुल ओढ़ लिया। आंखें मूंद कर सिर दुकुल में लपेट लेने पर भी छाया की बात कानों में गूंजती रही, महादेवी ने अम्मा को आदेश दिया है कि कुमारी आर्य रुद्रधीर की अभ्यर्थना करें। दिव्या प्राय ही यथा अवसर अनेक द्विजवंशियों और यवन सामंतों युवकों की अभ्यर्थना करती रहती थी। रुद्रधीर की अभ्यर्थना भी वह कई बार कर चुकी थी। इस समय अभ्यर्थना के आदेश का आयोजन जानकर उसका मन विरक्त हो उठा। स्वर्ण खंचित रक्त काशे से अपने गुम्फित केश बांधे, माथे पर श्वेत चंदन के खौर में रक्त तिलक लगाए रुद्रधीर उसकी कल्पना में दिखने लगा। उसके उत्तरी के नीचे यज्ञोपवीत लटक रहा था, परंतु हाथ में खड़ग नीच खींचे वह पृथ्वीसवन को दिव्या की सीका में कंधा लगाने से बरज रहा था। नेत्र मूदे दिव्या की कल्पना में रुद्रधीर के प्रति भय और व्यक्ति का भाव बैठ गया। दिव्या मुख से दुकूल झटक कर उठकर बैठी, छाया सुनो क्या काल होगा। दिव्या ने पर्यक के स्थूल का आश्रय लिए छाया अंगुलियों से माला गूंथती उसी ओर दृष्टि लगाए अपनी कल्पना में खोई। स्वामिनी की अनमनस्कता दूर करने की कर्तव्य भूल गई थी। सहसा पुकार सुनने से सतर्क होकर उसने द्वार में धाम की ओर देखकर उत्तर दिया, भद्रे संध्या में विलंब नहीं, भद्रे के संध्या प्रसादन की आज्ञा हो। नहीं हाँ हाँ हाँ, चंबुक हथेली पर रखे विचार में अंधवेदी आँखों से दिव्या ने उत्तर देगा।